ओके तो जो ग्लोबल हिस्ट्री लिखने के तहत विक्टर लिबरमैन ने ये बताया था कि दो तरह का जोन है, एक एक्सपोज जोन और एक प्रोटेक्टेड जोन। और एक्सपोज जोन जो वो बताते हैं, जो वो इंडो गैंजेटिक जो पूरा इलाका है हिंदुस्तान का, उसको वो कहते हैं कि वो एक्सपोज्ड जोन है। और एक्सपोज्ड वो इसलिए कहते हैं कि वो वहाँ पर तुर्कियों का या मुगलों का आक्रमण जो है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो एक मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर घोड़े पर चढ़कर वो लोग आसानी से हमला कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बताया था उसका रेफरेंस पॉइंट जो मैंने दिया था तुम लोगों को, वो दिया था कि आखिर ये जो एक्सपोज जोन का हाइपोथेसिस है वो क्या, जो हमारा मिड गंगा का क्षेत्र है, जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, क्या उस पे ये लागू होता है? क्योंकि उन्होंने तो एक जनरलाइजेशन कर दिया कि पूरा जो मिड गंगा, पूरा जो इंडो गैंजेटिक एरिया है वो एक्सपोज्ड है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें मध्य गंगा का क्षेत्र खासकर, तो देखेंगे कि जो मध्य गंगा का क्षेत्र है वो इतना एक्सपोज्ड नहीं है जितना लिबरमैन बताते हैं। क्योंकि जो तुर्क थे या बाद में मुग़ल आए, उन लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो इस इलाके को कब्जा करना चाहते हैं या इस इलाके पर रूल करना चाहते हैं। सो इसी जो ये जो भौगोलिक बाधा है, ये जो चुनौती है, और ये जो चुनौती है वो वहाँ की नदियों से मिल रही थी। क्योंकि ये जो पूरा मध्य गंगा का क्षेत्र है इसमें बहुत सारी नदियाँ, हमने शुरुआत के क्लास में आपको बताया था कि कैसे बहुत सारी नदियाँ आकर मिल रही थी गंगा नदी से, और उसके कारण ये जो नदियों का जाल है उस इलाके में वो इतना आसान भी नहीं था तुर्कियों के लिए और मुगलों के लिए कि उस इलाके में बाकी नॉर्थ इंडिया की तरह वो इसको आसानी से अपने कंट्रोल में रख सकें। सो मध्य गंगा का जो ये क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी अपनी विशेषताएं थीं और हैं, अभी भी हैं। इसलिए हमें एक्सपोज जोन का ये जो क्षेत्र है, या जिसको हमने हिंदी में बताया था कि उजागर क्षेत्र के रूप में हम बोल सकते हैं, सो ये उजागर क्षेत्र का जो ये मॉडल है, जो उजागर क्षेत्र का ये जो मॉडल है, क्या हम इस मॉडल को लिबरमैन द्वारा जो समझाया गया मॉडल है उसमें फिट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें इसको ध्यान से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रारंभिक आधुनिक काल में जो बिहार का निर्माण एक पृथक क्षेत्र के रूप में हुआ, उसको अगर हम समझें तो हम पाएंगे कि ये जो इलाका है, क्योंकि जब हम मध्य गंगा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार होता है उस इलाके का। तो मध्य गंगा क्षेत्र तो एक ज्योग्राफिकल डिवीज़न है। मैंने बताया था ना शुरू में कि जो गंगा है, पूरा गंगा जो नदी है, उसको हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक जो ऊपरी गंगा का क्षेत्र है जिसको अपर गंगा कहते हैं, एक मध्य गंगा का क्षेत्र और एक लोअर गंगा का क्षेत्र है। तो जो ये मध्य गंगा का क्षेत्र है, इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार का है। और इस क्षेत्र में बड़ा मुश्किल था मुगलों को या तुर्कों को अपना कंट्रोल रखने का। सो गंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे इतिहास में। और गंगा का जो मध्य गंगा का जो क्षेत्र है उसमें जो नदी का जो चरित्र है, और नदी का चरित्र जब हम बोल रहे हैं तो जहाँ जैसे मॉनसून के समय या गर्मी के दिनों में जैसे बहुत सी नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और वो सारी नदियाँ अंत में जाके गंगा नदी से मिलती हैं, तो ये जो नदी का चरित्र है उस इलाके में, वो अपने इन चरित्र के साथ, इन ज्योग्राफिकल चरित्र के साथ अपने एक तरह से सांस्कृतिक समरूपता का भी वो निर्माण करती हैं। सो बिहार में अगर आप देखिएगा तो बहुत से फोक सॉन्ग्स जो मध्यकाल में के हैं, ये जो आज भी प्रचलित हैं, वो नदियों के आसपास नदियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए और गाए जाते हैं। सो मोटे तौर पर जो ये समान पारिस्थितिकी है इस पूरे इलाके की, और जो यहाँ की जो समान संस्कृति बढ़ी या बनी, उसने धीरे धीरे बिहार का जो एक प्रशासनिक क्षेत्र बना था उसको एक तरह से आकार दिया। सो बिहार शुरुआत के दिनों में बिहार तो एक प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में बना है, लेकिन आप देखेंगे कि इस ये जो प्रशासनिक क्षेत्र था, ये जो प्रांत बनाया गया था बिहार का मध्यकाल में, प्रारंभिक मध्यकाल में, ये प्रशासनिक क्षेत्र जो है धीरे धीरे नदियों के साथ जुड़ी संस्कृति के आधार पर एक अपनी आइडेंटिटी ले लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संपूर्ण जो ये मध्य गंगा का क्षेत्र है उसको एक्सपोज्ड क्षेत्र के रूप में हम नहीं मान सकते हैं, जो तुर्क या मंगोल आक्रमण से प्रभावित रहे थे। अगर आप देखिए मौर्य से लेकर मुगलों के काल तक या अंग्रेजों तक, किसी भी शासक के अधिकार के लिए गंगा का जो ये मैदानी इलाका है, इस पर नियंत्रण हमेशा महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि और राजस्व के हिसाब से ये बहुत ही समृद्ध इलाका है। जहाँ तक मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक काल में विस्तार कर रहे ये जो मुगलिया राजवंश थे, इनके लिए जो इस इलाके की जो नदियाँ थीं उसने एक भौगोलिक बाधा के रूप में कार्य किया है। और वहीं इस अगर इसके विपरीत देखिएगा तो जो स्थानीय शक्तियाँ थीं, यानी उस क्षेत्र की जो स्थानीय रूलर थे, उनके लिए नदियों के प्रवाह जो था या प्रवाह के बारे में जो उनका ज्ञान था वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता था। इसलिए ये जो एक्सपोज जोन की थीसिस है, ये जो परिकल्पना है, वो विशेष रूप से मध्य गंगा मैदान में समस्याग्रस्त एक तरह से प्रतीत होता है। तो हम आगे अभी देखेंगे कि कैसे मध्य गंगा जो है वो उसका जो उसकी जो नदी की पारिस्थितिकी है, उसकी जो विशेषता के आधार पर जो बिहार सूबा का गठन है वो हुआ है, कैसे पूरे जो मध्य गंगा प्रांत पर नियंत्रण रखने के लिए तुर्कों ने भी प्रयास किया, मुगलों ने भी प्रयास किया, लेकिन आप देखिएगा कि खासकर तुर्क जो है वो असफल रहे इसमें। और मूल रूप से जो बिहार सूबा का जो विचार है, इसकी कल्पना किसने की थी ये भी हम आगे देखेंगे, और इस ये जो कल्पना है वो मूलतः वहीं का एक शासक है जो इस कल्पना को आगे बढ़ा पाता है, जो बाद में मुगलिया शासन ने अपना लिया है। सो औपचारिक रूप से जो सूबा बनाने का जो ये जो एक कल्पना है या परिकल्पना हुई थी प्रारंभिक आधुनिक काल में, इसके बावजूद अगर जबकि बाद में मुगल शासक इस परिकल्पना को फॉलो करते हैं और उसके कारण बिहार सूबा का की घोषणा भी करते हैं, उसके बावजूद उस इलाके को वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो और आप इनफैक्ट ये देखिएगा कि जो नदी की जो पारिस्थितिकी है उसके आधार पर जो बिहार की बोलियां हैं वो बोलियां भी जो है पॉपुलर हुई हैं, वो नदियों के आधार पर हुई हैं। सो नदियों ने जिस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को विभाजित किया है, उसने बोलियों को भी एक तरह से कैटेगराइज किया। सो हम देखते हैं कि जैसे शुरुआत करते हैं, जब तुर्क जब इस क्षेत्र में आए हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई तुर्क आए हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य वो तो हॉर्स पर घोड़े पर आगे बढ़ते थे और वो नए नए इलाके को ढूंढते थे जहाँ से ज़्यादा राजस्व निकाला जा सके। और उसका सबसे मूल कारण ये था कि शुरुआत में आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ है तो वो एकता व्यवस्था लेकर आते हैं, और एकता व्यवस्था के अंदर कमांडर्स को वो जो नई ज़मीन जो कोई कब्जा करता है उसको इकतदार को दे दी जाती थी और उस ज़मीन से जो राजस्व निकलता था वही इकतदार का एक तरह से अपनी सैलरी भी होती थी, उसी इकता से वो अपने कंटिंजेंट को भी मेंटेन करता है। तो ये जो शुरुआत के दिनों में दिल्ली सल्तनत है वो हमेशा से नए नए क्षेत्रों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करता है और उनको बिहार का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा आकर्षित करता है। तो उनका बेसिकली मुख्य उद्देश्य था कि भाई कहीं कोई नई ऐसी जगह हमें कंट्रोल करें जहां से हमें राजस्व लेने निकालने की या तो अनुमति मिल जाए या कोई उनको राजस्व दे दे, सो कई बार ट्रिब्यूट के फॉर्म में दे दे, है ना। लेकिन जब इस क्षेत्र में आते हैं तो ये अगर आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत सा इलाका जो है उन्होंने कब्जा किया है, बलबन के समय में भी किया है, लेकिन जब वो इस क्षेत्र में आते हैं बिहार मध्य गंगा का जो क्षेत्र है उसमें आते हैं तो वो यहाँ बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहते। मुगलों ने इनफैक्ट बाद में आगे चलकर वहाँ के लिए गवर्नर्स भी नियुक्त किया, राज्यपाल नियुक्त किया ताकि इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से इसका प्रशासन किया जाए। हालांकि राज्यपाल स्थापित करने के बाद उनको कुछ सफलता ज़रूर मिली है लेकिन ये सफलता बहुत लंबी नहीं चली है, वो बीच बीच में रिवोल्ट्स होते रहे उन गवर्नर्स के अंतर्गत भी। और बहुत सारे मुगल डॉक्यूमेंट जो हैं इसके बारे में बताते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो हमेशा रिवोल्ट से ग्रसित रहा है, यानी विद्रोह होते रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो ये जो पूरा मध्य गंगा का क्षेत्र है लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें लगभग 89% हिस्सा जो है, 90% हिस्सा जो है बिहार का है। सो मैंने बताया ना कि जो 10-11% हिस्सा है वो थोड़ा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, नहीं तो मध्य गंगा का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बिहार में ही है। सो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे बलिया है, गाजीपुर है, गोरखपुर है, वाराणसी है, वो गंगा के मध्य भाग का हिस्सा है। सो मध्यकालीन जो इतिहास लेखन है अगर आप उसको पढ़िए तो वो बताता है कि बिहार में एक भी राजनीतिक इकाई नहीं थी और जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं इस अवधि के दौरान विभिन्न छोटे राज्यों की छोटे छोटे एक तरह से रियासतें कहें या राज्य कहें उनकी सीमा बनाती थी, है ना। सो हमें बहुत कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जो ये पूरा बिहार का क्षेत्र है जहाँ पर तुर्कों के जब तुर्क आए हैं तो उसके पहले एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है पूरे बिहार को कोई एक ही शासक उस पर राज करता हो। इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था जब पालों का शासन था लेकिन पालों ने जब शासन किया था तो बंगाल भी उनका क्षेत्र था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो ये कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको मिल जाएगा, वो आपको पता नहीं चल रहा है मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। सो दिल्ली का जो ये क्षेत्र है इस दिल्ली के जो सुल्तान थे जो उन लोगों ने अक्सर इन छोटे राज्यों के इलाके को जीतने की कोशिश की और जैसे रोहतास का इलाका, मिथिला का इलाका, तिरहुत का इलाका, और वो चाहते थे कि इन इलाकों को वो दिल्ली सल्तनत में शामिल करें या यहाँ से कम उनको ट्रिब्यूट मिलता रहे। उस समय उत्तर और दक्षिण बिहार के जो दो व्यापक अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं हैं इनका एक तरह से गठन हो चुका था। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो मध्य बिहार मध्य गंगा का क्षेत्र है और गंगा नदी चूंकि बीच से गुजरती थी तो एक तरफ बिहार को दो इलाके के रूप में समझा जाता था, एक उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। सो ये दो तरह के व्यापक एक तरह से कहें तो राजनीतिक संस्थाएं थी और इसका मुख्य कारण था कि ये जो बिहार का जो ये मैदान है पूरा मैदानी क्षेत्र है वो दो तरह, एक तरह हम उसको एकदम इक्वली डिवाइडेड तो नहीं कह सकते लेकिन दो असमान भागों में ये पूरा क्षेत्र जो है विभाजित था। इसने प्राकृतिक सीमा भी बनाई और इसलिए दोनों भागों के बीच राजनीतिक सीमा को भी चिन्हित किया गया। तबकात नासरी में आप अगर आप पढ़ें मिन्हाज सिराज ने जो लिखा है, जो जानी ने, उसने अपनी किताब में लिखा है कि तिरहुत जो है, जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और बिहार इलाका वो कहता है दक्षिणी बिहार को, सो बेसिकली वो कहता है एक तिरहुत है और दूसरा बिहार है और बिहार से मतलब उसका दक्षिणी बिहार से। सो ये जो बिहार की परिकल्पना है ये तो बाद में बनी है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों शामिल होते हैं, लेकिन जब मिन्हाज लिख रहा है उस समय उत्तरी बिहार को बिहार के रूप में नहीं जाना जाता, उत्तरी बिहार को तिरहुत के रूप में जाना जाता है और उसका उल्लेख वो 13वीं शताब्दी के समय करता है। और इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है, जो मध्य गंगा का क्षेत्र, इसको दो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों के रूप में वो देखता है। इनफैक्ट जब वो बख्तियार खलजी के बंगाल की तरफ बढ़ने की जो डिस्क्रिप्शन देता है उस दौरान भी वो इन दो तरह के बिहार के क्षेत्रों की बात करता है और वो बताता है कि कैसे वो अंत में जाकर बंगाल में अपनी खुद की रियासत जो है बख्तियार खलजी ने की बनाई है। तो और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मिन्हाज अपनी पुस्तक में नहीं बता पाया है, वो बहुत बड़ा कारण शायद बिहार की जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी थी उसके कारण ऐसा हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा नदियाँ थीं, इतना चारों तरफ वाटर बॉडीज थी कि खलजी को भी ये लगा होगा, बख्तियार खलजी को भी, कि इस इलाके पर शासन करना आसान नहीं है। पहली बार बिहार जो है वो 1324 में जाकर 14वीं शताब्दी में, जब गियासुद्दीन तुगलक का शासन है, इसको एक तरह से कहें तो एक यूनिफाइड प्रांत के रूप में देखा गया है। लेकिन इसमें जब गियासुद्दीन तुगलक इसको देख रहा है तो अगर आप इनफैक्ट जियाउद्दीन बरनी को पढ़िएगा तो उसमें जब इस पूरे क्षेत्र को समझा जा रहा है तो उसमें भागलपुर और मुंगेर इसको उसका हिस्सा नहीं माना गया है। इनफैक्ट 14वीं शताब्दी के जो क्रॉनिकलर हैं इसामी, उन्होंने बंगाल से लौटने के बाद कोसी नदी को पार करते हुए तिरहुत पर बताया है कि कैसे गियासुद्दीन की विजय हुई है और उसका उन्होंने वर्णन भी किया है। तो वो कहते हैं कि गियासुद्दीन कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए तिरहुत पर कब्जा कर पाता है। उन्होंने ये भी बताया है, इसामी ने उसमें लिखा है कि कैसे इस क्षेत्र पर उन्होंने एक वहाँ का लोकल रूलर था राजा हर सिंह देव, उसको डिस्प्लेस भी किया था और बाद में तुगलकों ने तिरहुत इलाके में का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो दरभंगा है वहाँ पर उन्होंने जामी मस्जिद भी बनवाई और उसमें उसका जो शिलालेख है वहाँ पर उसमें लिखा भी हुआ है कि इस जामी मस्जिद का निर्माण जो है तुगलकों ने किया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इलाका है ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों से अछूता रहा था, लेकिन ये इलाका लंबे समय तक उनके नियंत्रण में नहीं रह सका। फिरोज शाह के बाद जो तुगलकों की आपको पता है दिल्ली सल्तनत की जो ताकत है वो गिरती चली गई है और बहुत से नए नए क्षेत्र जो हैं अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं। उसी समय आपको मालूम होगा कि जो जौनपुर है वो शर्की साम्राज्य वहाँ स्थापित होता है और जौनपुर इलाके में जो ईस्टर्न इंडिया का ही हिस्सा है, यानी बिहार से लगा हुआ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जौनपुर में जब शर्कियों ने शासन स्थापित किया है तो वो पहली बार इन शर्कियों ने पूरा जो ये पश्चिमी और दक्षिणी बिहार का हिस्सा है ना, जो वेस्टर्न बिहार है और जो सदर्न बिहार है, उसको जौनपुर के शर्की जो शासन है उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी उसको जीत लिया जाता है। 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि शर्कियों की लड़ाई जो है वो लोदियों से होती है, तो सिकंदर लोदी उस इलाके को ऑब्वियसली जब वो शर्कियों से अपने शासन को कब्जे में लेता है तो नेचुरली उसको बिहार, पश्चिमी बिहार का हिस्सा भी मिल जाता है, दक्षिण बिहार का भी हिस्सा उसके उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया कि उसको लगा कि इस इलाके को उसको शासन करना बहुत मुश्किल है, तो उसने अपना जो प्रभार है, एक दूसरा अफगान शासक था दरिया खान नुहानी, उसको उसका प्रभार दे देता है वो, है ना। और बाद में नुहानी अफगान जो थे इन्होंने लोदियों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा वो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस इलाके में लोदी जो हैं वो आकर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और वो अपने आप को नुहानी अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और पहली बार मुंगेर और भागलपुर को भी बिहार का हिस्सा बना लिया जाता है ना। तो ये मुंगेर और बिहार का हिस्सा जो है, अगर आप मैप को ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये अगर आप देखें तो साउथ में, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में ये मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है ना। सो ये वाला, ये जो इलाका है, सो पहली बार आप देखते हैं क्या कि 16वीं शताब्दी में नुहानी शासक आए हैं और उन्होंने पूरा जो ये मध्य गंगा का क्षेत्र है उन्होंने उसकी उसको समझा है, और उन्होंने उसको इस इलाके को एक तरह से एकल साम्राज्य के रूप में देखा, एकल क्षेत्र के रूप में देखा है, ना कि साम्राज्य के रूप में। लेकिन देखिए क्या होता है कि 16वीं शताब्दी आते आते शेर शाह जो है वो धीरे धीरे नुहानियों से, वो भी अफगान है शेर शाह भी, और उसने 1540 के आसपास बिहार में अफगान साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और नुहानियों के द्वारा जो ये राजनीतिक एक तरह से प्राधिकरण क्रिएट किया गया था, इस आधार का वो उपयोग करता है और उसको पूरे बिहार को वो कब्जे में ले लेता है। इस अगर आप इन संघर्ष के इतिहास को ध्यान में देखें तो हमें जो बहुत सारे मिडिवल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उससे यही लगता है कि बीच बीच में विभिन्न शासकों ने, आउटसाइडर ने, जो बाहर से शासक आए हैं उन्होंने इस इलाके को जीतने की बार बार कोशिश की है, लेकिन वो लंबे समय तक इसको अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए। लेकिन पहली बार शेर शाह इस ये जो राजनीति जो समरूपता है, जो प्रशासनिक समरूपता है, उसको एक तरह से कहें तो इम्प्लीमेंट किया है जब वो पहली बार एक बिहार सूबा की परिकल्पना करता है। मैंने आपको बताया था कि शेरशाह ने खासकर, चूंकि शेरशाह वहीं पर पला बड़ा था, शेरशाह का जन्म भी वहीं हुआ था बिहार के सासाराम के इलाके में, तो शेरशाह को ये मालूम था कि वो इस इलाके में की प्रकृति कैसी है, उस इलाके में जो नदियां बहती हैं वो कैसे बहती हैं, तो उस इलाके का बहुत ज्ञान था उसको। तो उसने इस पूरे क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह से महसूस किया था, और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने में भी वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। सो अगर आप देखें तो पहली बार शेरशाह के अधीन जब सूर शासन स्थापित होता है तो एक सूबे के रूप में बिहार प्रांत का एक तरह से बीजारोपण होता है। क्योंकि शेरशाह ने गंगा, ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, उसके नदी की पारिस्थितिकी को समझा था। और शेरशाह ने राजनीतिक क्षेत्र की परिकल्पना करने के लिए नदी के प्रवाह और जो उसकी जो सहायक नदियों का जो प्रवाह है, गंगा नदी का जो प्रवाह है, उसको ध्यान में रखा। शेरशाह ने इनफैक्ट गंगा के जो आसपास के प्रदेशों का प्रदेश थे, भले ही गंगा से वो दूर थे, उस सबको वो समझता है। और उसने ये देखा है कि ये सारी नदियाँ, इवन जबकि वो गंगा के क्षेत्रों से वो प्रदेश दूर हैं, लेकिन वो गंगा से उनका जुड़ाव है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ जो उधर उन इलाकों से गुजरती है वो जाकर गंगा में ही मिलती हैं। भले ही वो साउथ बिहार का की पुनपुन नदी हो, या सोन नदी हो, या उत्तर की गंडक नदी हो, या अन्य नदियाँ हो। उसने ये भी देखा है कि इस पूरे इलाके की जो जलवायु है, जो मानसून है, वो एक तरह की है, और वो एक तरह की फसल परंपरा है इस पूरे इलाके में, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उस क्षेत्र में उसने बहुत दिन रहा था और पला बढ़ा था, तो उसको इस इन सब चीज़ों का ज्ञान था। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसने एक प्रशासनिक क्षेत्र के निर्माण को बेसिकली एक तरह से बढ़ावा दिया। 1574 से 76 के, क्योंकि शेरशाह का शासन का अंत हो जाता है, आपको पता ही है, 45 में जब अचानक शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स होते हैं वो बहुत दिनों तक सूर शासन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और पुनः हुमायूं जो है इस इलाके को कब्जा कर लेता है, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था इस इलाके से में, और अपना सल्तनत स्थापित की थी। हुमायूं भागकर वेस्ट एशिया चला जाता है। तो 1574 और 76 के बीच अकबर ने मुगल साम्राज्य के नियंत्रण, ये जो है उसको फिर से, इस इलाके को भी उसने नियंत्रण किया है, हुमायूं ने नियंत्रण में ले लिया था। और वो अकबर खासकर जब अब्बास सरवानी इस इलाके का इतिहास, क्योंकि तारीख़ शेरशाही जब लिखी गई है तो अकबर को उसकी जानकारी होती है, क्योंकि अकबर के समय तारीख़ शेरशाही लिखी गई है, और जो बायोग्राफी है शेरशाह की, और अकबर बड़ी समझदार है, वो समझता है उस तारीख़ शेरशाही में। कई बार अब्बास सरवानी लिखते हैं कि कैसे उस बिहार के क्षेत्र का की पारिस्थितिकी क्या है, और उसको वो शेरशाह कैसे उसको एक्सप्लॉइट करता है। सो अकबर ने मुगल साम्राज्य को नियंत्रण में, इस इलाके को नियंत्रण में रखने के लिए वो समझता है कि हमें इस प्रोविंस को, जो शेरशाह ने जिसकी परिकल्पना की है, इसको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसलिए 1580 में इस इलाके को वो कब्जा कर लेता है पूरे तरह से 76 तक, लेकिन 1580 में जाकर इसका जो है एक तरह से प्रशासनिक पुनर्गठन करता है, और बिहार को एक अलग सूबे के रूप में अनाउंस करता है, है ना, उसको डिक्लेयर करता है कि बिहार एक अलग सूबा है। पहले बिहार जो है वो अलग सूबा नहीं था, उनके ये जो पूरा सूबा है उसके अधीन पहले तो सूर जो शासन था शेरशाह सूरी की, उसने उसकी नींव डाली थी। जौनपुर के जो इसके पहले शेरशाह के पहले जो जौनपुर के जो शर्की शासक थे, उन्होंने भी इस इलाके को नियंत्रित किया था, और मैंने आपको जैसा बताया कि सिकंदर लोदी ने भी किया था जौनपुर को, जब सिकंदर लोदी जौनपुर में शर्कियों से उसकी जो का युद्ध हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में उसकी विजय में के रूप में उसको बिहार का पूरा मध्य गंगा का क्षेत्र भी मिल जाता है। ये सारी बातें अभी हमने इसकी चर्चा की, लेकिन आप देखेंगे कि इस इलाके में लोदियों के समय ही न केवल नोहानी बल्कि इसके अलावा कई छोटे अफगान एक तरह से चीफ्टेंस जो हैं वो बिहार में जागीर एक तरह से हासिल कर लेते हैं। शेरशाह भी बेसिकली सासाराम में, जो उसके पिता को एक जागीर दी गई थी, उसका बेसिकली वो उत्तराधिकारी था, लेकिन धीरे धीरे उन सारे अफगानों को इकट्ठा करके और एक सूर शासन स्थापित करता है। सो बेसिकली सारे अफगान जो चीफ्टेंस थे बिहार के इलाके में उन सारे अफगानों को वो इकट्ठा करके और वो एक प्रमुख उसका बन जाता है। उसका जो वो जो पूरा जो क्षेत्र जो उस जिस जो शेरशाह जिसने उस उसकी परिकल्पना की है उसमें वो ना केवल बिहार का वो हिस्सा जो सासाराम का हिस्सा जहाँ पर उसका केंद्र है शासन का शुरुआत के दिनों में, उसके अतिरिक्त वो पूरा जो मुंगेर का इलाका है उसको भी वो शामिल करता है, भागलपुर का इलाका भी शामिल करता है, तिरहुत को भी शामिल करता है। और उसने जो पटना है उसको अपनी राजधानी के रूप में एक अलग प्रांत बन, चूँकि बिहार को एक अलग प्रांत बनाता है तो वो पटना को उसकी राजधानी बनाता है उस प्रांत की। सो बेसिकली शेरशाह का जो ये विचार है बिहार का जो क्षेत्र है उसको वो जब वो प्रांत के रूप में समझता है और पटना को उसकी राजधानी के रूप में देखता है तो वो बेसिकली वहाँ के नदी की जो पारिस्थितिकी है उसके आधार पर वो ये समझ उसकी बनी। शेरशाह ने प्रशासनिक बिहार का जो ये जो विचार की जो ये कल्पना की है ये बेसिकली वहाँ के पारिस्थिति के अनुरूप है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो उस समय के कई और भी जैसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे तारीख़ दाऊदी है उसमें चौसा की लड़ाई का जिक्र है 1539 में जो हुई है जब हुमायूं का युद्ध होता है शेरशाह से 1539 में, क्योंकि इसी युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया है। इसमें उस पूरे क्षेत्र के एक तरह से जो जो वहाँ की जो पारिस्थितिकी है एक तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है और ये बताया गया कि क्यों हुमायूं को इसमें हार का सामना करना पड़ता है शेरशाह से। बेसिकली अब्दुल्ला एक राइटर थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी तारीख़ दाऊदी, और बेसिकली ये दिल्ली का जो बहलूल लोदी के का जो एक तरह से वंशज था दाऊद खान करानी, उसने उसके समय में ये किताब लिखी है। सो बेसिकली ये दाऊद करानी को समर्पित किताब है, इसीलिए इसका नाम तारीख़ दाऊदी है। और उसमें ये बताता है अब्दुल्ला कि कैसे शेरशाह ने शुरुआत में जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ गया है और शेरशाह को ये लग रहा है कि बिहार का इलाका भी वो कब्जा कर लेगा, मुगल साम्राज्य में उसको शामिल कर लेगा, तो शेरशाह ने शुरुआत में जो बिहार का जो मध्य गंगा का क्षेत्र है उसको वो बोलता है कि हम तुमको दे देते हैं, शेरशाह कहता है हुमायूं को, और अपने लिए वो बंगाल में अपने लिए कहता है कि मुझे बंगाल में शासन करने दो। शेरशाह जो इस मध्य गंगा क्षेत्र को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, जो पेशकश कर रहा है हुमायूं को, उसने बहुत स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र की पहचान की है जिसको वो बिहार कह रहा है, और वो कहता है कि पूर्व में गढ़ी तक है ना, गढ़ी बेसिकली इलाका है जो पश्चिमी बिहार का पूर्वी बिहार का वो सीमावर्ती जो बंगाल का इलाका है वहाँ पर है। तो कहता है कि गढ़ी से लेकर कर्मनासा नदी है ना, तो कर्मनासा नदी है जैसे ही आज मॉडर्न डे बिहार में अगर आप एंटर करते हैं तो कर्मनासा नदी के बाद बिहार का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो कहता है कि वहाँ से लेकर गढ़ी से लेकर कर्मनासा नदी तक बिहार का क्षेत्र है। वो हुमायूं को उसको कहता है कि आप इस क्षेत्र को ले लो और गढ़ी के बाद मुझे शासन करने दें। लेकिन ये जो नेगोशिएशन शेरशाह करना चाह रहा है, ये जो पेशकश कर रहा है, वो हुमायूं उसके लिए राजी नहीं होता है और दोनों में अंत में आपको पता है कि ये युद्ध होता है। सो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक क्षेत्र के रूप में जो बिहार का जो विचार था, हालांकि फॉर्मल रूप में एक प्रशासनिक प्रांत के रूप में शेरशाह उसकी घोषणा नहीं करता है, लेकिन एक प्रांत के रूप में वो परिकल्पना इसकी कर चुका है। सोलहवीं शताब्दी के जो का जो उत्तरार्ध का क्षेत्र बाद का जो लेटर हाफ है उसमें भी कई बार गढ़ी का उल्लेख आता है और उसमें बताया गया है कि बिहार, ये जो बिहार की पूर्वी सीमा है वो गढ़ी तक है। और इनफैक्ट जब मुगलों ने बिहार सूबा की घोषणा की है अकबर के समय में, जो बिहार सूबा की घोषणा हुई है उस समय भी ये बताया गया है कि बिहार सूबा गढ़ी तक है। आपको पता है कि 1580 में अकबर ने ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, प्रशासनिक उद्देश्य से 15 प्रांत बनाए थे और उसमें से एक प्रांत जो था वो बिहार भी था। अबुल फजल ने तो आइन जो अकबरी लिखी है उसमें उस पूरे इलाके का, उस बिहार सूबा है उसकी सीमा का वर्णन भी किया है। वो बताते हैं कि कैसे गढ़ी से जो पूरा रोहतास तक, सासाराम में रोहतास तक वो पूरी लंबाई जो है 120 किलोमीटर की है। और वो बताते हैं कि कैसे बिहार का एक प्रांत जो तिरहुत से उत्तरी पहाड़ी है उसकी चौड़ाई नीचे तक 110 कोस है। और 101 बेसिकली कोस के टर्म्स में वो इसलिए बताते हैं कि एक कोस करीब करीब 3.5 किलोमीटर के बराबर होता है। तो उसकी पूर्वी सीमा पर वो बताते हैं कि कैसे, अबुल फजल बता रहे हैं कि उसकी पूर्वी सीमा पर बंगाल है, पश्चिम में इलाहाबाद है और अवध है, और उत्तर और दक्षिण में उसकी जो ऊंची पहाड़ियों से वो पूरा क्षेत्र घिरा है। बिहार सूबा के ये जो अकबर का प्रशासनिक एक तरह से प्रांत बना है उसमें नदियों को बड़ा ध्यान में रखते हुए सरकार की का एक तरह से विभिन्न, जब प्रांत बनते थे तो उसमें कई सरकारें बनती थी, है ना। जो प्रांत होते थे उसके अंदर कई जिले होते थे, सरकार से मतलब है जिले, सो कई जिले बनाए जाते थे। तो बिहार में जब 7 सरकारें भी बनाई गई थी, यानी जब बिहार का प्रांत की घोषणा की थी अकबर ने तो इसमें 7 सरकारें बनाई गई थी, बिहार, मुंगेर, चंपारण, है ना, और सारण, रोहतास, हाजीपुर और तिरहुत, ये 7 बेसिकली हमारे पास ये थी जो सरकारें थी और जो मुगलों के समय में बनाई गई है। गंगा ऑब्वियसली ये सारी सरकार, ये जितनी जो सरकारें बनी है ये गंगा के दक्षिण और उत्तर इलाके में है। चंपारण सरकार जो है वो बेसिकली आप देखें तो गंडक नदी के दाहिने किनारे पर स्थित थी। सारण सरकार जो है वो गग्गर और गंडक नदी के बीच स्थित थी। रोहतास जो है वो गंगा और सोन नदी के बीच में फैला हुआ था, है ना। अगर आप वो मैप मैं आपको फिर से दिखाऊं, है ना, इस मैप में आप देखिएगा, इस मैप में आपको ये सारी सरकारें दिखेंगी। सो मैंने बताया ना चंपारण जो है वो दाहिनी किनारे पर है, अगर आप गंडक नदी के, सारण जो है वो गग्गर और गंडक नदी के बीच है, है ना, रोहतास गंगा और सोन नदी के बीच में है। उसी तरह से जो सरकार हाजीपुर है वो बूढ़ी गंडक और गंडक और गंगा का जो एक बीच में जो एक तरह की पट्टी है, एक तरह का जो कहें संकीर्ण पट्टी है उसके बीच का इलाका है। तिरहुत जो है वो बूढ़ी गंडक नदी के उत्तरी किनारे पर है। तो ये सारी चीज जो सरकारें भी बनी हैं तो इन सरकारों का भी जो गठन किया गया है वो नदियों के आधार पर किया गया है ना। और बिहार में जो ये सरकार की सीमाएं हैं वो बेसिकली वहाँ के, अगर आप बीम का एक बीम ने एक पुस्तक लिखी थी, बीपी अम्बस्था ने उसको एडिट किया है, बीम्स कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी, है ना। सो उसमें अगर आप देखिएगा तो वो कहते हैं बीम्स कि ये जो सीमाएं हैं जब उसमें सरकारें बनती हैं तो वो साथ साथ उसमें एक तरह की द्वंद्वात्मक सीमा है, मतलब डुअल सीमा है। डुअल सीमा इसलिए वो कहते हैं कि उसमें एक तरफ तो नदियों की सीमा है जो सरकारें बना रही हैं, और दूसरी तरफ ये सीमाएं एक लैंग्वेज को भी जन्म के आधार पर भी बनी हुई हैं। तो आप वो कहते हैं कि जैसे अगर उनके अब बीम्स का अगर ध्यान से उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें देखिएगा कि बिहार सरकार जो है उसमें मगही के रूप में उसका अवलोकन है। अब वो पूरा जो इलाका है जिसको वो पटना और गया वाला क्षेत्र है तो वो मगही के रूप में वहाँ मगही भाषा बोली जाती है। चंपारण सारण का जो इलाका है और जो रोहतास का इलाका है वो भोजपुरी भाषी है। हाजीपुर और तिरहुत का इलाका है वो मैथिली भाषी है, और जो मुंगेर का इलाका है वहाँ पर अंगिका बोली जाती है। तो ये देखिए मैंने इसमें इस मैप में ये मैप बेसिकली मेरी किताब जो स्पीकिंग रिवर है उसमें उससे मैंने दिखाया है। उस किताब में मैंने ये 7 सरकारें हैं उसको उसका डिवीज़न कैसे लैंग्वेज के आधार पर भी है उसमें भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मैप्स आप देख रहे हैं ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये बेसिकली ये जो सरकारों का क्षेत्र जो डिवीज़न है ये कई बार कोइंसाइड करता है उनकी लैंग्वेज की सीमाओं से भी, है ना। सो बेसिकली लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सरकारों के डिवीज़न के बावजूद, यानी एक बिहार प्रांत बनाया है अकबर ने, उस प्रांत में नदियों को आधार रख के सरकारें बनाई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो है मुग़ल पकड़ जो है उसकी वो पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो पाती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो मुग़ल शासन है उसकी उसकी जो ताकत थी वो घोड़ों में थी, उसकी जो ताकत थी उसकी मूवमेंट में थी, जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी में थी। और ये जो ताकत है वो इतने बड़े जो नदी क्षेत्र है इसमें वो ताकत का इस्तेमाल मुग़ल नहीं कर पाते हैं, और अगर कर पाते भी हैं तो एक सीमित समय के लिए, यानी कंटिंजेंट आता है किसी इलाके में अगर रिवोल्ट होता है तो उसको दबा देता है, है ना, सेना जाती है उसको दबा देती है, लेकिन जैसे ही सेना वापस होएगी उस इलाके में फिर से रिवोल्ट हो जाता है। अगर आप पूरे इलाके का ध्यान से अध्ययन करें, इनफैक्ट एक गुजराती निवासी था अब्दुल लतीफ़, जिसने 1608 में आगरा से राजमहल तक, राजमहल का इलाका जो बंगाल का इलाका है, उसने नदी से यात्रा की थी, और उसमें वो लिखता है कि कैसे चौसा जो है वो गंगा के किनारे का एक गांव है जहां से बिहार का प्रांत शुरू होता है। और वो बताता है कि इस ये जो पूरा इलाका है कैसे नदियों से भरा पड़ा है, और उससे उसने ये कहीं नहीं बताया है, हालांकि 1608 में जब वो लिख रहा है कि मुग़लों को इससे तकलीफ़ हुई है, मुग़लों को शासन करने में परेशानी होती होगी, लेकिन उसने इस पर बहुत एम्फेसिस दिया है कि ये जो पूरा इलाका है जब वो इस क्षेत्र से गुजरता है तो उसको लगता है कि इस ये जो क्षेत्र है नदियों के कारण बहुत ही डिफ़िकल्ट क्षेत्र है। तुर्क और मुग़ल ऑब्वियसली इस इलाके में भौगोलिक जो ये बाधा पैदा कर रहे हैं, नदियां जो पैदा कर रही हैं, उसके कारण वो इसको आसानी से इसलिए नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। अपने पूरे इतिहास में अगर आप देखिएगा तो मुग़ल का अगर पूरा इतिहास देखें, मैं अकबर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के जहांगीर के समय में देखिए या शाहजहाँ के समय में देखिए, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो कभी भी लंबे समय तक के लिए मुग़ल साम्राज्य के अधीन शांति से नहीं रह पाया है। हमेशा बार बार इस सूबे में यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षाएँ जो हैं वो उजागर होती है, वो रिवोल्ट कर देते हैं। जब भी कोई जो गवर्नर है वो राजस्व एकत्र करने के लिए दूर जाता है तो उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर जो लोकल रूलर है उसको नियंत्रण में कर ले लेता है। उस इलाके को, और जैसे ही फिर वापस वो रूलर आता, गवर्नर आता है, तो वो लोग नदी के रास्ते दूसरी तरफ चले जाते थे। और इसका हमें सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है जब अकबर पटना और हाजीपुर के किलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उस समय जो बिहार में लोकल रूलर्स चीफ्टेंस जो हैं, अफगान चीफ्टेंस जो हैं, वो उसके लिए कैसे बहुत तरह के प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं। उसने बिहार में जब उसको पता था कि बिहार प्रांत की घोषणा उसने कर दी है, तो उसने मुईम खान को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया है। लेकिन जो अफगान हैं वो उसके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे अफगान उस समय के जो लोकल अफगान थे, जैसे कासिम खान था, मोहम्मद खान था, जुनैद खान था, ये लोग सारे लोग बिहार के विभिन्न इलाकों में मुगल गवर्नर को के लिए परेशानी कर रहे थे। अब इस बात को अकबर को इसका एहसास होता है। अकबर और इनफैक्ट आईने अकबरी में इसके बारे में बताया गया है। तो जब भी गंडक नदी में एक तरह से फ्लड आता है, तो नदी का मैं ये जो पूरा इलाका है बाढ़ से भर जाता है, तो उसमें विद्रोह हो जाता है। और अफगान जो है वो अच्छी तरह से जानते थे कि मुग़ल सेना इतनी आसानी से जो बहती हुई नदियाँ हैं, जो बाढ़ से पानी से भरी हुई नदी है, उसको वो पार नहीं कर पाएंगे। सो बार बार जो है इन इलाकों में, खासकर उत्तरी बिहार के इलाकों में, अफगानों के विद्रोह होते रहे, जो लोकल अफगान्स हैं। सही, एक इतिहासकार हुए, मॉडर्न हिस्टोरियन अस्करी, सैयद अस्करी उनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया है कि हालांकि आईने अकबरी वो बताता है कि कैसे बिहार एक प्रांत है, लेकिन व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वो कहते हैं कि ये क्षेत्र एक प्रांत के रूप में नहीं उभर सका है। और वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो उस समय का जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा, वो पूरी तरह से इस इलाके को, इस बिहार प्रांत को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है। क्योंकि एक इंसिडेंट वो देते हैं कि कैसे वो बिहार जो है कई तरह के जो सैनिक कमांडर हैं, उसके बीच में राज्यपाल को उसको पार्सल आउट करना होता है, देना पड़ता है कि भैया तुम इसको कब ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो। उसी के समय में अगर आप देखिए, मुगलों के समय में तो बहुत सारे लोकल रूलर जो हैं, जो हिंदू रूलर्स भी हैं, जैसे गज्जन साई है, उन्होंने भोजपुर और जगदीशपुर इलाके में विद्रोह खड़ा कर दिया। सो उसी तरह से कई वहाँ के लोकल जमींदार थे, जागीरदार थे, उन्होंने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो कहते हैं कि हम राजस्व नहीं देंगे। सो बेसिकली अकबर के बहुत चाहने के बाद भी बिहार में अराजकता को वो रोक नहीं पाता है। इनफैक्ट एक बार एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है कि जब जहांगीर के समय में भी ऐसा हुआ है, जब उसने बिहार एक जब विद्रोह करता है वो अकबर के खिलाफ, तो वो बिहार को ही अपने कब्जे में ले लेता है, यहीं आकर वो शरण लेता है और यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, चीफ्टन्स हैं, उसकी मदद वो लेता है। इनफैक्ट बिहार सूबे के नियंत्रण के लिए शाहबाज खान और सादिक खान के बीच बहुत तरह के मतभेद हुए हैं। यानी ये जो दोनों शाहबाज खान और सादिक खान थे, ये बेसिकली मुगल राज्यपाल ही थे, इनके बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी, वो अस्करी कहते हैं कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस इलाके को नियंत्रण करने में बहुत तरह की अड़चनें थी और मुगलों के लिए इसको नियंत्रण करके रख पाना बहुत मुश्किल था। अगर आप बिहार से संबंधित जो अगर दस्तावेजों को देखेंगे, तो जो बिहार आगरा से दिल्ली से अगर आगरा जो क्षेत्र जहाँ पर मुगलों का की कैपिटल है, राजधानी है, या पूरा जो आगरा दिल्ली का क्षेत्र है, उसको बिहार से नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जब मुगल सम्राट विद्रोह होते हैं तो बड़ी सेना लेके वो खुद ही आ जाते हैं या एक कमांडर को भेजते हैं, जैसे बाद में मानसिंह को भेजा गया था, तो वो विद्रोह को दबा देते हैं, उसको नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ये जो जीत होती है वो बहुत ही अस्थायी होती है। जैसे ही सेना वापस जाती थी, जो स्थानीय प्रमुख था वो फिर से जीवित हो जाता था, वो फिर से मुगल अधिक जो मुगल रूल्स हैं उसकी अवहेलना करने लगता है, राजस्व संग्रह को चैलेंज करने लगता है। इसीलिए शायद आंशिक रूप से देखें तो डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बाद में जब उसको ट्रेडिंग राइट्स दिया है मुगलों ने, तो बिहार में ये जो ट्रेडिंग राइट्स है वो बिहार का क्षेत्र ही उन्हें मिलता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण, हालांकि मुगल डॉक्यूमेंट इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण शायद यही था कि ये जो क्षेत्र था वैसे भी मुगलों के नियंत्रण में उतना नहीं रहता था। सो इसलिए शुरुआती समय में जब 1765 में अंग्रेजों को राजस्व संग्रह का जो अधिकार दिया गया है ना, तो वो अधिकार जब दिया गया है तो उसमें बिहार का इलाका दिया गया, ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र है वो भी दिया गया, और पूरा बंगाल का इलाका दिया गया है। अब बिहार में जो अगर आप देखिए बिहार में जो ये रिवर है, ये अगर ध्यान से देखें तो अगर मुगल नदियों में उनकी जो नेवल सेना है वो बहुत ताकतवर होती तो बहुत आसानी से इसको कब्जा कर सकते थे, क्योंकि बिहार में जो नदी है उसमें पूरे साल पानी रहता है। इनफैक्ट बहुत से ये जो बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इसमें जो नियंत्रण इतने आसान देर तक रहा, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो उनका जो मूवमेंट था और ट्रेड भी जो बढ़ा है वो इसलिए था क्योंकि इसमें वो मूव करते थे, वो जो ट्रेड करते थे वो नदियों के थ्रू करते थे। इनफैक्ट एक जब मैं रोम गया था तो एक बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं अभी, ये बेसिकली मूर्ति एक बनाई है बर्नीनी नाम के एक रोमन मूर्तिकार थे। इन्होंने ना कई चार एक तरह से चार नदियों को रिप्रेजेंट किया है इस मूर्ति में, और ये रोम का एक जो सेंट्रल पॉइंट है पियाजा नावोना उसको कहते हैं, वहाँ पर ये एक तरह से मूर्ति खड़ी आज भी खड़ी है। इसमें एक जो मूर्ति जो चार मूर्तियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना, चारों तरफ से चार इसमें पुरुष बनाए गए हैं, और इन चारों मूर्तियों में चार बेसिकली ये जो चार लोग हैं जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बेसिकली नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें एक जो नदी है वो है गंगा, बाकी तीन नदी नील नदी है जो नाइल रिवर जिसको कहते हैं, डेन्यूबे है, और एक रियो रिवर है जो ब्राज़ील की। तो इस ये जो मूर्तिकार है ये बेसिकली ये बहुत पुरानी मूर्ति है, और इसने जो ये इस मूर्ति में जो गंगा का रिप्रेजेंट करने वाला जो पुरुष दिखाया गया है, आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक पतवार है, आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक पतवार है। बेसिकली ये जो पतवार है वो रिवर के नेविगेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको कहें नौगम्यता, है ना। सो वो जो पतवार है वो बताता है कि गंगा नदी जो है वो आसानी से नौगम्य थी, यानी उसमें आसानी से आप आ जा सकते थे। सो यूरोपीय दुनिया में गंगा जो है वो एक आसानी से बहने वाली नदी के रूप में उसका चित्रण होता था, और लेकिन चूंकि मुगल जो थे वो नाव जो परिवहन था या उनकी जो नेवल सेना थी वो उसमें उतने अच्छे नहीं थे, इस कारण इस इलाके को वो आसानी से कब्जा नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनकी नेवल सेना मजबूत होती तो ये बड़े आसानी से इलाके पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन उनका जो मुख्य आधार था ताकत का, वो था घुड़सवार सेना और पैदल सेना। और उन्होंने जितने भी लंबी दूरी की यात्रा की, जहाँ जहाँ इन्वेजन किया, उसमें घोड़ों की उन्होंने घोड़ों को ही प्राथमिकता दी है। इनफैक्ट जब वो एक्सपैंड करते हैं तो अपनी सैन्य शक्ति को के साथ साथ और अपने वाणिज्यिक ज़रूरतों के लिए भी सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और इनफैक्ट गंगा नदी, गंगा ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, इस इलाके में वो नदी एक परिवहन नेटवर्क बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि अगर मान लीजिए उस इलाके को उनको कंट्रोल भी करना था तो एक चाहिए था कि एक कम से कम रोड नेटवर्क ही रहे, ताकि घोड़ों पर ही तो मूवमेंट उनका आसानी से हो पाए। लेकिन क्या होता है कि सड़कों का जो नेटवर्क है वो इस इलाके में इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ एक भौगोलिक सीमा थी, जो यहाँ की पारिस्थितिकी थी वो एक चैलेंज पेश करती थी। यहाँ पर सभी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना संभव नहीं था। अगर आप देखिए तो इस पूरे इलाके में 4-5 महीने भरपूर बारिश होती थी। उस समय कोई कंक्रीट की सड़क तो बनती नहीं थी, सड़कें जो बनाई जाती थी वो कच्ची सड़क होती थी ताकि घोड़े उस पर मूव कर सकें। लेकिन बारिश के मौसम में खासकर ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता था। अगर सड़कें आपने बनाई भी जो कच्ची सड़क, तो वो पूरी तरह से ढक जाती थी। सो बेसिकली बारिश के मौसम में ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, इसमें सड़कें अगर बनी भी हैं तो अनुपयोगी हो जाती हैं। और इनफैक्ट वहाँ इस पूरे मध्य गंगा क्षेत्र में जून से लेकर सितंबर तक तो शर्तिया बारिश होती है, और कई बार अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश होती है, जिसमें जो वहाँ के लिए फेमस है एक हथिया रेन कही जाती है, हथिया बारिश। तो वो हथिया बारिश एक रूप है, बारिश के कई रूप हैं, तो उसमें हथिया बारिश होती है। और वो बारिश कई बार अक्टूबर के महीने तक होती है, वो बड़ी तेज़ी से टोरेंशियल रेन लेके आती है। कहने का मतलब कि इतने लंबे समय से, जून से लेकर लगभग अक्टूबर तक बारिश जो है वो होती है इस इलाके में। और इसलिए यहाँ पर सड़कों का की जो ये नहीं बनने की जो ये का ये जो चैलेंज है, वो भी शायद इसलिए मुग़ल जो है इस इलाके को आसानी से कब्जा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। एक इंसिडेंट बड़ा ही अद्भुत है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर हम लोग इसका अंत करेंगे। एक इस इलाके में अबुल फजल ने बताया है कि कैसे मुग़ल सेना जो है इस इलाके को, अकबर के समय में पूरा पटना का इलाका जो है वो उसके फोर्ट को वो जीतना चाहता है, और क्योंकि वो अफगानों के अधीन है, बार बार वहाँ रिवोल्ट होते हैं। और पटना का जो किला है वो नदी तट पर है, गंगा नदी के तट पर। उस समय वो जो इलाका था वो करारनी शासक थे, उनके अधीन था। और बारिश के कारण जो मुग़ल सेना है उसके जो मूवमेंट है उसको उसने विचलित कर दिया था। और उस अभियान के दौरान अकबर को गंडक और गंगा की नदी जो है उसमें जो बाढ़ आई थी उसका भी सामना करना पड़ा था। अब मुग़ल सेना करती क्या है कि उसने सबसे पहले इस इलाके को कब्जा करने के लिए उसने सोचा कि हमें सबसे पहले एक करारनी शासक का इंटरनल आदमी को अपने में शामिल करना पड़ेगा, ताकि वो हमें यहाँ की लोकल पारिस्थिति के बारे में समझा सके। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे मुग़लों को इस इलाके को जीतने के लिए वहाँ के लोकल रूलर्स में से एक अधिकारी को अपने में शामिल करना पड़ा था, जो कि बहुत आसान नहीं था। सो करनी सेना का एक अधिकारी था, उसका नाम था हसन खान भटानी, अफगानी था। और उसने उसको मुग़लों ने अपने पक्ष में कर लिया। उसने सबसे पहले जो करारनी शासक थे वहाँ के लोकल, उसको हराने का उसने तरीका बताया। और वो कहता है कि कैसे नदी के प्रवाह को, कि जब तक, वो कहता है कि जब तक गंगा में नदी का जो प्रवाह है उसको जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक आप करानी शासक को हरा नहीं सकते, उस फोर्ट पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सेना जो है वो इतने उफनते नदी में पार नहीं कर पाएगी। सो हसन खान पठानी जो है उसका पहला सुझाव है कि पुनपुन नदी पर जो बांध है उसको सबसे पहले तोड़ दिया जाए, ताकि जो पुनपुन नदी का जो संचित पानी है वो गंगा में प्रवाहित हो सके और पटना किले की तरफ जो प्रवाह है, यानी पटना का जो फोर्ट है उसकी तरफ जो पानी आ रहा है उसके प्रवाह में कमी हो जाएगी। सो जो वो पानी है पुनपुन नदी का पानी, वो जो गंगा के पानी को के प्रवाह को बढ़ा दिया था उसने पटना किले की तरफ, वो कहता है कि जब वो बांध तोड़ देंगे तो प्रवाह जो है उसमें कम हो जाएगा। और रातों रात मुगल सेना क्या करती है, उस बांध को ध्वस्त कर देती है। बतानी फिर दूसरा प्रस्ताव देता है कि सबसे पहले गंगा का जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरे तरफ का क्षेत्र है, मतलब गंगा नदी से पार करके हाजीपुर के किले पर अगर आपको कब्जा करना है तो दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, यानी गंडक नदी की तरफ से जाना पड़ेगा। और पटना और हाजीपुर के बीच में जो गंगा का जो प्रवाह है उसकी दूरी लगभग, वो कहता है आइन-ए-अकबरी में बताया गया कि 2 कोस के करीब है। और यहीं पर अकबर जो है वो नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और वो अपनी सेना की छोटी टुकड़ी को पीछे के रास्ते से, गंडक के रास्ते हाजीपुर किले पर हमला करने के लिए भेजता है। और इस तरीके से जब उस इलाके में वो एंटर कर जाते हैं, उस फोर्ट में जब वो एंटर कर जाते हैं, तब वो पटना फोर्ट की तरफ एक बड़े सेना को भेजता है रोड के रास्ते, यानी सड़क के रास्ते। और इस तरह से पूरा जो पटना और हाजीपुर का किला है उस पर कब्जा होता है। एक्चुअली हाजीपुर के किले को कब्जा करने के लिए बटानी इसलिए बताता है क्योंकि हाजीपुर के किले से ही पटना किले में आपूर्ति आती थी और वो गंगा नदी के थ्रू आती थी। तो कहता है कि जब आपूर्ति, एक बार आप हाजीपुर के किले को कंट्रोल कर लेंगे तो वो आपूर्ति आना पटना किले पर बंद हो जाएगी और फिर सड़क के रास्ते आप पटना किले को घेर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो चुनौतियाँ थी, मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए बताया कि एक तरह से उस इलाके की चुनौती के को बताता है। और ये जो चुनौतियाँ हैं ये बीच बीच में विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग समय में विद्रोह के रूप में दिखती हैं। और हमेशा से विभिन्न शासकों द्वारा इसकी चर्चा की गई है कि कैसे उसके इलाके में विद्रोह, बिहार के इलाके में विद्रोह हो रहे हैं। अगर आप ये जो अब तक हमने चर्चा की है, हमने इन सारी चीज़ों को बताने के दौरान आपको बताया कि बिहार का जो इलाका है वो, उसकी एक अनोखी पारिस्थितिकी है, उसका एक द्वंद्वात्मक चरित्र है, क्योंकि वहाँ वो जो नदियाँ हैं वो प्रशासनिक रूप से सरकारें बनाती हैं और ये नदियाँ एक तरह से भाषाओं को भी निर्धारित करती हैं। अब ये जो भाषाएं हैं, ये जो बोलियां हैं, इनको भाषाओं की जगह बोलियों से अगर हम चिन्हित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये धीरे धीरे लोगों को अपनी सरकारों को आइडेंटिफाई करने में मदद पहुंचाती हैं। और लेकिन आप देखिएगा कि इन सारी भाषाओं ने अपने आप को लार्जर रूप में गंगा नदी से आइडेंटिफाई किया और इसीलिए ये जो प्रशासनिक प्रांत बनाया गया था बिहार का, ये एक तरह से एक नई आइडेंटिटी के साथ इमर्ज करता है अर्ली मॉडर्न पीरियड में। तो आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये जो रीजनल आइडेंटिटी बनी है उसमें भाषाओं का क्या रोल रहा है।